नगरीय समाज का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ अर्बन सोसाइटी। बर्गल ने उचित ही कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि नगर क्या है, किंतु किसी ने भी संतोषजनक परिभाषा नहीं दी है। नगर केवल एक विकास का स्थान ही नहीं, वरन एक विशिष्ट पर्यावरण का सूचक भी है। यह जीवन जीने का एक विशिष्ट ढंग और एक विशिष्ट संस्कृति का सूचक भी है। नगरों की जनसंख्या अधिक होती है, वहाँ जनघनत्व भी अधिक पाया जाता है। व्यवसायों की बहुलता एवं भिन्नता, औपचारिक व द्वितीयक संबंधों की प्रधानता, भोगवाद, भौतिकवाद, व्यक्तिवाद, कृत्रिमता, जटिलता, व्यस्तता, गतिशीलता आदि नगरीय जीवन की प्रमुख विशेषताएँ हैं। नगर की परिभाषा जनसंख्या के आधार पर भी की गई है। अमेरिका की जनगणना ब्यूरो ने नगर ऐसे स्थान को माना है जहाँ की जनसंख्या 25,000 या उससे अधिक हो। फ्रांस ने 20,000 तथा मिस्र ने 11,000 जनसंख्या वाले क्षेत्र को नगर माना। विलकॉक्स ने ऐसे क्षेत्र को जहाँ का जनघनत्व 1,000 व्यक्ति प्रति वर्ग मील तथा जेफरसन ने 10,000 प्रति वर्ग मील आबादी क्षेत्र को नगर कहा है। विलकॉक्स के अनुसार जहाँ मुख्य व्यवसाय कृषि है उसे गांव तथा जहाँ कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय प्रचलित हैं उसे नगर कहेंगे। बर्गल लिखते हैं कि नगर ऐसी संस्था है जहाँ के अधिकतर निवासी कृषि कार्य के अतिरिक्त अन्य उद्योगों में व्यस्त हों। लुईस वर्थ नगर को परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से एक नगर की परिभाषा सामाजिक भिन्नता वाले व्यक्तियों के बड़े घने बसे हुए एवं अस्थायी निवास के रूप में भी की जा सकती है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि नगर वह क्षेत्र है जहां जनसंख्या की बहुलता एवं विविधता पाई जाती है। गैर कृषि व्यवसाय, श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण, द्वितीयक संबंधों की प्रधानता एवं औपचारिकता आदि नगरीय केंद्रों की प्रमुख विशेषताएं हैं। नगरीय समाज की विशेषताएं। नंबर एक, जनसंख्या की बहुलता। ग्राम एवं नगर का भेद प्रमुखतः जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। शहरों में जनसंख्या एवं जनघनत्व अधिक पाया जाता है। जनसंख्या की अधिकता के आधार पर ही नगरों का विभिन्न श्रेणियों में जैसे नगर एवं महानगर आदि में वर्गीकरण किया जाता है। नंबर दो, जनसंख्या की विभिन्नता। नगरों में विभिन्न धर्मों, मतों, संप्रदायों, जातियों, वर्गों, प्रजातियों, भाषाओं एवं प्रांतों से संबंधित लोग निवास करते हैं, अतः यहाँ की जनसंख्या में विभिन्नता पाई जाती है। नंबर तीन, व्यवसायों की बहुलता एवं भिन्नता। नगर में कार्यों की बहुलता होती है, वहाँ अनेक प्रकार के व्यवसाय पाए जाते हैं। सिगरेट, माचिस, दवाओं, कपड़ा, चमड़ा, ऊन, मशीन निर्माण, प्लास्टिक, बारूद, सीमेंट, लकड़ी, लोहा, ईंट, कागज आदि से संबंधित एवं अन्य हजारों प्रकार के व्यवसाय शहरों में देखने को मिलते हैं। नंबर फोर, श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण। शहर में कार्य का बंटवारा देखने को मिलता है। यहाँ व्यक्ति अलग अलग व्यवसायों में लगे होते हैं, साथ ही एक व्यक्ति किसी एक ही कार्य का विशेषज्ञ होता है। श्रम विभाजन और विशेषीकरण के कारण पारस्परिक निर्भरता भी पैदा होती है। नंबर फाइव, द्वितीयक संबंधों की प्रधानता। क्योंकि नगरों की जनसंख्या अधिक होती है, अतः यहाँ सभी लोगों से प्राथमिक व आमने सामने के घनिष्ठ संबंध कायम करना कठिन होता है। नगर के लोगों में औपचारिक एवं द्वितीयक संबंधों की प्रधानता पाई जाती है। नंबर छः, कृत्रिमता। नगरीय लोगों का जीवन बनावट एवं आडंबर युक्त होता है, वे दिखावे में अधिक विश्वास करते हैं। नंबर सेवन, गतिशीलता। नगरों में सामाजिक एवं भौगोलिक गतिशीलता अधिक पाई जाती है। शहरी लोग एक स्थान छोड़कर लाभ के लिए अन्य स्थानों पर जाने को तैयार होते हैं, उनमें स्थान के प्रति कम लगाव पाया जाता है। नंबर एट, विभिन्नता। नगर विभिन्नताओं का केंद्र होता है। धर्म, भाषा, संस्कृति, प्रथा, रीति रिवाज, व्यवसाय, पहनावा, रुचि, हित आदि के आधार पर नगर में अनेक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। नंबर 9, व्यक्तिवादिता। नगर में सामूहिक एवं सामुदायिक जीवन की अपेक्षा व्यक्तिवादिता अधिक पाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति समुदाय की अपेक्षा स्वयं की अधिक चिंता करता है। नंबर 10, सामाजिक समस्याएं। नगर में वर्तमान में नगर अपराध, बाल अपराध, वेश्यावृत्ति, बेकारी, गंदी बस्तियां, पागलपन, निम्न स्वास्थ्य, कुपोषण, वर्ग संघर्ष, वायु प्रदूषण एवं बीमारी आदि अनेक समस्याओं के केंद्र बन गए हैं। नेल्स एंडरसन ने आधुनिक नगरीय समाजों की 5 विशेषताओं का उल्लेख किया है। वे हैं, नंबर 11, मुद्रा अर्थव्यवस्था। आधुनिक नगरों में मुद्रा अर्थव्यवस्था मनी इकोनॉमी पाई जाती है। उसके फलस्वरूप व्यापार का कार्य सुविधा से हो जाता है। विनिमय के लिए सामान को लादकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ही नहीं ले जाना पड़ता है। इसके कारण धन का संचय भी होने लगा, जो व्यक्ति की शक्ति का परिचायक बन गया। नंबर 12, लिखित आलेख। नगरों में मुद्रा का प्रचलन एवं व्यापार के प्रसार के साथ साथ लेखन कार्य व कागज का प्रचलन बढ़ा। अब मनुष्य अपने हस्ताक्षर और मोहर से जाना जाने लगा। कागज पर समझौते होने लगे और आलेख अस्तित्व में आए। अतः नगरों में अधिकांश कार्य लिखित रूप में ही होता है। नंबर 13, आविष्कार एवं तकनीक। नगरों में विकसित तकनीक, शिक्षा एवं प्रशिक्षण पाया जाता है। फलस्वरूप वहाँ नित्य नए आविष्कार जन्म लेते हैं। अनेक प्रकार की समस्याओं का नगर के लोगों को सामना करना पड़ता है, जिन्हें हल करने के लिए नए नए आविष्कार एवं प्रविधियों की खोज करते रहते हैं। नंबर 14, सुदृढ़ प्रशासन। नगरीय जीवन के जटिलता एवं समस्याओं के समाधान के लिए वहाँ सुदृढ़ प्रशासन की आवश्यकता महसूस होती है। सुरक्षा, न्याय, पुलिस, पानी, बिजली, शिक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य, यातायात, संचार, सफाई एवं सार्वजनिक कल्याण की देखरेख आदि के लिए सुदृढ़ प्रशासन का होना आवश्यक है। नंबर 15, सांस्कृतिक आविष्कार। नगर सांस्कृतिक आविष्कार के भी जनक हैं और वहाँ से कई नए सांस्कृतिक परिवर्तन ग्रामों की ओर जाते हैं। नगरों में विभिन्न संस्कृतियों के संपर्क एवं पर संस्कृति ग्रहण की प्रक्रिया के कारण संस्कृति में परिवर्धन, परिष्कार एवं परिवर्तन होते रहते हैं। ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेने के बाद हम यहाँ इन दोनों प्रकार के जीवन की तुलना करेंगे। इस प्रकार की तुलना में हमारे सम्मुख कठिनाइयाँ भी हैं। ग्रामीण एवं नगरीय समाजों की तुलना में कठिनाइयाँ। ग्राम और नगर में भेद प्रकट करने के दौरान आने वाली कुछ कठिनाइयों का मैकाइवर एवं पेज ने इस प्रकार से उल्लेख किया है। सर्वमान्य परिभाषा का अभाव। पहला, ग्रामीण एवं नगरीय समाजों में भेद करने में सबसे बड़ी कठिनाई इन दोनों के सर्वमान्य परिभाषा का अभाव है। कहीं जनसंख्या को आधार माना गया है तो कहीं पर्यावरण और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को, कहीं प्राथमिक संबंधों की प्रधानता को ग्राम और द्वितीयक संबंधों की प्रधानता को नगर कहा गया है, तो कहीं पर कृषि कार्य करने वाले क्षेत्र को ग्राम और औद्योगिक कार्यों में लगे क्षेत्र को नगर कहा गया है। अतः स्पष्ट है कि ग्राम एवं नगर के बीच भेद स्पष्ट करने के लिए कोई सर्वमान्य पैमाना नहीं है। नंबर 2, ग्रामीण और नगरीय जीवन के अंशों का अंतर। ग्रामीण और शहरी समाजों के बीच अर्थों का ही अंतर है। प्रत्येक नगर में कई ग्रामीण तत्व देखने को मिलेंगे और प्रत्येक ग्राम में कई विशेषताएं नगर में देखने को मिलेंगी। मैकाइवर और पेज लिखते हैं कि परंतु दोनों के बीच इतना स्पष्ट अंतर नहीं है कि यह बताया जा सके कि कहाँ नगर समाप्त होता है और कहाँ ग्राम प्रारंभ होता है। नंबर 3, नगर में विभिन्न पर्यावरण। ग्रामीण और नगरीय समाजों में भेद करने में एक कठिनाई यह है कि नगर में विभिन्न पर्यावरण पाए जाते हैं। अतः इन दोनों में तुलना किस आधार पर की जाए? नगर में विभिन्न प्रजातियों, भाषाओं, धर्मों, संप्रदायों, वर्गों और व्यवसायों से संबंधित व्यक्ति पाए जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप नगर में विभिन्नता का पर्यावरण उत्पन्न हो जाता है। नंबर 4, नगर और ग्राम की परिवर्तनशील प्रकृति। ग्राम और नगरों का जीवन भी परिवर्तनशील है। ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते रहते हैं। औद्योगिकरण एवं नगरीकरण की प्रक्रिया नगरों की संस्कृति, आचार विचार, व्यवहार एवं व्यवसायों ने ग्रामों को प्रभावित एवं परिवर्तित किया है। गाँवों में आधुनिक शिक्षा, बिजली तथा अन्य अनेक सुविधाएँ उपलब्ध हो रही हैं, अतः गाँवों का नगरीकरण हो रहा है और ग्राम तथा नगर का अंतर कम होता जा रहा है। यदि यह प्रक्रिया निरंतर चलती रही तो ग्राम एवं नगर का भेद भविष्य में काफ़ी कुछ समाप्त हो जाएगा। अतः स्पष्ट है कि ग्रामीण और नगरीय जीवन में भेद करने में अनेक कठिनाइयां हैं, फिर भी दोनों प्रकार के जीवन में अंतर किया जा सकता है। यह अंतर शुद्ध ग्रामीण और शुद्ध नगरीय जीवन में ही पाया जाता है।